This is an ABP Life podcast.
नवंबर 2023 में एक रेव पार्टी में हुई रेड और पॉपुलर यूट्यूब एंड बिग बॉस ओटीटी 2 विनर एल्विश यादव पर आरोप लगे स्नेक वेनम, सांप का जहर प्रोवाइड कराने के। फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता चला कि ये जहर कोबरा और क्रेट सांप का जहर है। पुलिस क्वेश्चनिंग के दौरान एल्विश यादव ने ये बताया कि जिस पार्टी के वीडियो में स्नेक्स नजर आए हैं वो बॉलीवुड सिंगर फजील पुरिया ने अरेंज कराए थे। इतना ही नहीं, एनजीओ पीपल फॉर एनिमल्स में पिछले साल 5 लोगों को अरेस्ट किया गया था। स्नेक वेनम को लेकर एक स्टिंग ऑपरेशन किया गया था। बरामद हुए थे 9 सांप जिनमें से 5 कोबरा थे और करीब 20 ml स्नेक वेनम भी पार्टी के वेन्यू से पकड़ा गया था। और उन गिरफ्तार हुए लोगों ने बताया था कि उन्होंने एल्विश यादव की पार्टी के लिए सांप का इंतजाम किया था। एक सप्लायर राहुल यादव को भी अरेस्ट किया गया था और उसने भी एल्विश यादव का नाम अपने स्टेटमेंट्स में लिया। एक्यूज्ड लोगों ने पुलिस क्वेश्चनिंग में बताया दे सप्लाइड स्नेक वेनम एट रेव पार्टीज ऑर्गेनाइज्ड बाय एल्विश यादव। रेव पार्टी के सैंपल्स को जयपुर FSL भेजा गया था फॉर एनालिसिस, जिसके बाद नोएडा सेक्टर 49 पुलिस स्टेशन में एल्विश यादव के खिलाफ FIR हुई। हालांकि एल्विश यादव ने सारे एलिगेशंस डिनाई कर दिए थे, लेकिन अब कुछ दिन पहले 17 मार्च को एल्विश यादव अरेस्ट हुए। नोएडा पुलिस ने गिरफ्तार किया एल्विश यादव को और उन्होंने पूछताछ के दौरान कुछ कबूल भी किया है और बताया कि पार्टी में शामिल आरोपियों के साथ पहले भी रेव पार्टीज में वो मिल चुके हैं। आरोप तो यही है कि पार्टी में स्नेक वेनम और स्नेक की सप्लाई करवाते हैं। चलिए आइए लीगैलिटीज पर भी अब बात कर लेते हैं। हमारे साथ में जुड़ने जा रहे हैं।
नमस्कार मानसी जी, मेरा नाम श्वेतांक सलकवाल है। मैं एज एन एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ।
थैंक यू सो मच सर एबीपी लाइव पॉडकास्ट के साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहला सवाल जो मैं आपसे करने जा रही हूँ वो यही कि ये बताइए कि स्नेक वेनम का इस्तेमाल और सांप की जो खरीद फरोख्त है ये कितना बड़ा अपराध है? ये स्नेक वेनम का इस्तेमाल आखिर होता कहाँ है, क्यों होता है?
देखिए, पहला तो ये अपराध हमारे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में डिफाइंड है। अगर आप किसी भी एनिमल या स्नेक या किसी भी चीज को अगर आप गलत तरीके से यूज करते हैं अपने पर्सनल पर्पजेस के लिए या उनको नुकसान या किसी भी टाइप की हानि पहुंचाते हैं तो उसमें ये एक पनिशेबल ऑफेंस है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में, जिसमें आपको 3 साल तक की सजा का प्रावधान दिया हुआ है।
और इसमें कुछ ही एनिमल्स आते हैं?
नहीं, इसमें वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में एक शेड्यूल है जिसमें एनिमल्स डिफाइन किए हुए हैं गवर्नमेंट ने कि ये सारे एनिमल उसमें कवर होंगे।
तो वो और उनमें स्नेक
सारे जी
जी ओके सर। अब ये स्नेक वेनम का इस्तेमाल अगर आप बताएं सर कि कहाँ होता है, क्यों होता है?
देखिए, स्नेक वेनम का इस्तेमाल कुछ दवाइयां बनाने के लिए होता है। जैसे अगर आपको किसी सांप ने काटा गलती से तो उसी का क्योर करने के लिए ये स्नेक वेनम का इस्तेमाल किया जाता है। इसका मेडिसिनल पर्पसेस के लिए इसका यूज होता है बेसिकली।
ओके सर। और जहाँ पार्टी में रिक्रिएशनल यूज के लिए हो रहा था?
जी
जी सर।
ये मुझे भी आप ही के लोगों के द्वारा ये जानकारी मिली है क्योंकि ये हम भी इससे अवगत नहीं थे। ये चीज हमारे सामने भी बहुत पहली बार आई है कि भाई स्नेक वेनम का यूज पार्टीज में हो रहा है। इस पे एक दवी जुबान में मैंने अभी कुछ पढ़ने की कोशिश की। जब ये केस चर्चा में आया तो मैंने काफी कुछ इस पर रिसर्च करने की कोशिश की भाई ये है क्या। तो कई लोगों ने इसमें दबी जुबान में इसका जिक्र किया है कि भाई पार्टीज में स्नेक वेनम यूज होता है और ये एक टाइप का आपको एक हाई करता है जिसका मतलब या तो असर 6 से 7 घंटा रहता है या कहीं कहीं तक 6 से 7 दिन भी रहता है।
क्या ये जहर नुकसानदायक नहीं है? मतलब जहर तो हम सब अमूमन यही जानते हैं कि आपकी बॉडी के लिए हानिकारक है।
बिल्कुल है। जहर तो किसी भी प्रकार का जहर वो आपके लिए हानिकारक ही है। आप सिगरेट भी पीते हैं तो उसमें भी निकोटीन होती है। उस पे अगर आप देखेंगे कवर पे वार्निंग लिख के आती है कि ये पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो किसी भी टाइप का आप ऐसे सब्सटेंसेस यूज कर रहे हैं तो ये आपको कहीं ना कहीं लॉन्ग रन में बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाएंगे।
एग्जैक्टली। देश में ये कितना बड़ा कारोबार है सर? कब से चलता आ रहा है इस तरह सांप की तस्करी?
देखिए, ये तो पहला मामला है जो सामने आया है। सांप की तस्करी का तो बात अलग है कि देखिए कुछ मैंने वो भाई जैसे कस्टम्स पे कई बार ये इंडेंजर्ड स्पीशीज में कई स्पीशीज आती है
जी।
तो उनका भी ट्रांसपोर्टेशन और इंडिया से एक्सपोर्ट की जाती है इलीगली। तो ये इंडेंजर्ड स्पीशीज में आती है जिनको प्रोटेक्ट किया हुआ है वाइल्ड लाइफ ने प्रोटेक्शन एक्ट ने। तो अगर ये इंडेंजर्ड स्पीसीज को अगर आप बाहर ले जा रहे हैं विदाउट द परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट तो ये अपराध ही है। उसमें कस्टम्स पे भी कई लोग पकड़े गए हैं बट ये होता था कि वो लोग शौक से ले जाते थे, अपने शौक पूरा करने के लिए लोग उसको इलीगली ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं किसी और कंट्री में.
बट
यहाँ पर तो इसका जहर का इस्तेमाल हो रहा है उसको हमारे ही देश में पार्टीज में.
जी, पिछली बार नवंबर में जब आरोप लगे थे एल्विश यादव पर, तब नार्कोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985 में ड्रग्स का सबूत ना मिलने की वजह से चार्जेस डिसमिस हो गए थे उन पर. लेकिन इस बार उन्हें किन धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया है?
देखिए, मैंने FIR नहीं पढ़ी है तो मैं आपको पूरी चीज पे तो उस पर नहीं बता पाऊंगा. बट हाँ, जो आप लोगों के या मीडिया के माध्यम से मुझे जानकारी मिली है तो उस पे सेक्शन 8 है, सेक्शन 20 है, सेक्शन 27 है NDPS एक्ट, और सेक्शन 29 है. तो ये सारे जो है जितने भी धाराएं 27 एंड 29, ये जो भी धाराएं लगाई गई है, ये होती है कैनाबिस, जिसको हम हेम्प भी बोलते हैं, वो प्लांट होता है.
Okay.
उसका अगर आप वो यूज कर रहे हैं एंड अगर आप उसको यूज कर रहे हैं कमर्शियल पर्पजेस के लिए, आगे बेच रहे हैं, जैसे पर्सनल यूज कर रहे हैं तो आपकी सजा उसमें कम है, और अगर आप कमर्शियल क्वांटिटी में यूज कर रहे हैं तो उसकी सजा ज्यादा है. तो ये जो भी धाराएं लगी हैं ये कैनाबिस प्लांट्स को लेके लगी हुई हैं, जो कि मुझे मीडिया के माध्यम से पता चला है कि ये धाराएं लगी हैं. जैसे धारा 20 है वो बताती है कि पनिशमेंट फॉर कंट्रावेंशन इन रिलेशन टू कैनाबिस प्लांट एंड कैनाबिस. तो कैनाबिस प्लांट भी हमारे इस एक्ट में डिफाइंड है, उसमें क्या क्या आता है कि हेम्प हो गया, फिर उससे जो जो हम बनाते हैं जैसे गांजा है, चरस है, फिर ओपियम हो गया, उसके बाद फिर कोका प्लांट होता है, वो अलग होता है, उसके इंग्रेडिएंट्स अलग होते हैं, तो उसका भी यूज बैन किया गया है NDPS एक्ट में.
जी, अब सजा के क्या प्रोविजंस होते हैं इस एक्ट में, और अभी तक जो भी एल्विश यादव ने कबूला है कि हाँ, जो आरोपी गिरफ्तार हुए थे, मैं उनसे पहले भी पार्टीज में मिला हूँ, जिस तरह से उन्होंने कबूला है, सजा के क्या प्रोविजंस हैं, और जो उन्होंने कबूला है क्या कोई सजा बनती है?
देखिए, कबूलनामा जो है, आदमी अभी तो FIR स्टेज पे है. NDPS एक्ट में अगर आपके ऊपर कोई चार्ज लगा है तो इसमें चार्जशीट, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा, इसमें चार्जशीट फाइल करने का टाइम होता है 6 मंथ का. जैसे ऑर्डिनरी जो ऑफेंसेज होते हैं उसमें आप 60 दिन और 90 दिन, जहां पर आपका मर्डर आपने किया है या डकैती किया है या उसके वैसे हीनियस ऑफेंसेज है, वहां पर आपको 90 दिन का टाइम दिया हुआ है चार्जशीट फाइल करने का. इसमें टाइम है 6 महीने का चार्जशीट फाइल करने का.
Okay.
और 6 महीने विच कैन बी एक्सटेंडेड अप टू 1 ईयर विद द प्रायर परमिशन ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर.
ओके,
तो ये हाँ, तो ये चीज इसमें है. तो उनके पास इन्वेस्टिगेशन करने का पूरा टाइम है. ये स्नेक वेनम जो मैंने शेड्यूल देखा या जो भी NDPS पढ़ा है तो उसका पार्ट तो मुझे स्नेक वेनम स्पेसिफिकली कहीं भी मेंशन नहीं है इस पूरे एक्ट में.
अच्छा,
तो okay. और दूसरा ये है कि रही कबूलनामे की बात, तो अगर पुलिस के सामने दिया हुआ आपका कोई भी बयान है वो हमारे एविडेंस एक्ट में उसको एडमिसिबल नहीं होता है जब तक वो कोई रिकवरी नहीं होती है उनके बयान पे.
अच्छा.
तो उस बयान का तो कोई मतलब नहीं है, वो किसी भी दिन उससे अपने स्टेटमेंट से पलट सकते हैं, क्योंकि वो ये कह सकते हैं कि मुझे दबाव में लेके ये बयान दिया गया. तो उस बयान को तो मैं नहीं मानता हूँ कि ये कबूलनामा है उनका.
Okay.
जब तक चार्जशीट नहीं फाइल हो जाती है, और वो तो ट्रायल के दौरान प्रूव होगा कि ये कबूलनामा था या नहीं था.
अच्छा, अगर कबूलनामा हो गया, सजा अगर होती है, अगर आरोप सिद्ध हो जाते हैं,
तो मैं हम लोग अब हम उस पर सजा पे आते हैं. देखिए, अगर आप कमर्शियल, आप प्राइवेट यूज के लिए कोई चीज ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए क्वांटिटी 10 ग्राम है, किसी भी आप गांजे की क्वांटिटी आपकी 10 ग्राम है, 20 ग्राम है, तो वो कमर्शियल क्वांटिटी से बहुत कम में आती है, वो प्राइवेट यूज में आ गई, तो वहां पर आपको सजा होगी 1 साल की. अब मान लीजिए आपके पास 1 किलो गांजा है, तो वो 1 से 1.5 किलो गांजा है, तो वो आपके कमर्शियल क्वांटिटी में आता है कि आप कहीं पर उसको आगे प्रोवाइड कर रहे हैं लोगों को, तो उसमें सजा 10 साल है.
ओके, ओके.
और बहुत ज्यादा क्वांटिटी में अगर आपके पास मिला है तो सजा 20 साल की भी हो सकती है. 10 साल विच कैन बी एक्सटेंडेड अप टू 20 ईयर्स.
ओके, यानी कि बचने के चांसेस हैं कि नहीं है?
देखिए, बचने के चांसेस तो मैं ये कहूंगा कि देखिए, अभी आप चार्जशीट फाइल करने होने तक तो हम वैसे भी कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि अभी तो अंडर इन्वेस्टिगेशन है. और ऐसे केसेस में क्या होता है कि कोर्ट बेल देने में भी असमर्थ होता है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी गाइडलाइंस है सुप्रीम कोर्ट की कि भाई बेल देने में कई चीजें देखते हैं कोर्ट, जैसे आपका व्यवहार कैसा रहा है. अब एल्विश यादव के केस में तो आप जानते ही हैं कि उन्होंने 2 और उनके वीडियोज अभी सामने आए हैं, जो मुझे मालूम हुआ है मीडिया के माध्यम से, कि एक उन्होंने किसी के साथ मारपीट की, फिर कहीं जयपुर में भी उन्होंने कोई किसी के साथ मारपीट की थी. तो कोर्ट देखता है उसमें आपका पहला प्रीवियस आपका व्यवहार कैसा, एंटीसीडेंट जिसको बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में, वो आपके कैसा रहा है, तो वो सारी चीजें भी इनके खिलाफ जाती है। प्लस अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, अभी चार्जशीट नहीं फाइल हुई है। तीसरा सबसे बड़ी चीज जो है कि आप एक इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति हैं, आप जो है वो ट्रायल को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो इसमें तो जब तक चार्जशीट नहीं फाइल होती, अगर पुलिस ये बोलती है कि हम ये एनडीपीएस के जितने सेक्शन से ये हटा रहे हैं, हमको नहीं मिला इनके खिलाफ कुछ, तो आपके बेल होने के चांसेस बहुत अच्छे हैं, आप बाहर आ सकते हैं। बट अगर अब पुलिस इस पे रहती है कि नहीं आपके खिलाफ ये एनडीपीएस के सेक्शन रहेंगे, चार्जशीट में भी रहेंगे, तो इनका जो है बाहर आना बहुत मुश्किल है।
ओके ओके
जी,
थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए ऑन एबीपी लाइव पॉडकास्ट। मैं मानसी हूँ आपके साथ।
दिस इज एन एबीपी लाइव पॉडकास्ट।